نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين يا رب العالمين. آپ نے ابھی تک نماز نبوی میں دیکھ چکی ہیں، اس سے پہلے طہارت کا پورا بیان ہم پڑھ چکے ہیں. آپ پیج نمبر 62 پہ آ جائیں. غسل، وضو اور تیمم. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا. تو یہ یاد رکھیں کہ غسل جنابت یہ نہیں ہے جیسے کہ ہم شاور کے نیچے چلے گئے اور نکل آئے تو غسل جنابت ہو گیا ہمارا. بہت ساری بچیاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، نہیں پتہ ہوتا کیسے کرنا ہے. ایون یہاں تک کہ پیریڈس کے بعد بھی، جب سے ٹین ایجر ہیں وہ پیریڈس بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں، کبھی بتایا ہی نہیں کسی نے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ناپاک ہو جائے تو پھر پاک ہونے کا غسل کیسے کرنا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے کیا کیا، دونوں ہاتھ دھوئے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ہاتھوں سے ہی ظاہر سارے جسم کو دھونا ہے نا، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. دیکھیں، اگر آپ اس طریقے سے انشاءاللہ روزانہ وضو کریں گے، سوری غسل کریں گے نا، تو یہ آپ کو یاد رہ جائے گا. آپ کوشش کریں کہ آپ جو اپنا عام شاور لیتی ہیں، چاہے وہ جنابت کا نہیں بھی ہے، پاک ہونے کے لیے نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ اسی طرح سے شاور کریں تو آپ سے سنت بھی دیکھیں پوری ہو جائے گی نا، اس کا بھی اجر آپ لے لیں گے انشاءاللہ. تو دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر استنجا کریں، شرم گاہ کو دھوئیں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح دھوئیں. کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے نا، جس سے آپ استنجا کرتے ہیں. تو یہ کام آپ شاور میں ہی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ باہر کریں، آپ باہر بھی کر سکتے ہیں، شاور میں بھی جا کے کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کو دھونا ہے. ظاہر ہے آپ نے اس سے مطلب اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگایا ہے، تو اس کو آپ دھوئیں گے. ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ زمین پہ رگڑ کے ہاتھ کو دھویا کرتے تھے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جیسے اینٹی سیپٹک کا کائنڈ آف کام دیتی ہے. اس کے اندر سے بہت ساری مطلب جراثیم مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تو سوپ وغیرہ نہیں تھے، صابن نہیں تھے، آج آپ کے پاس اینٹی بیکٹیریل صابن بھی ہے اور سب طرح کے ہیں، تو آپ کوئی بھی صابن ہی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کا یہ کام ہو گیا، یعنی آپ نے اپنے جو جگہ تھی گندگی کی وہ سب صاف کر لی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو آپ کریں گے. اب آپ نے ہاتھ تو دھو لیے ہیں نا، وضو میں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں ویسے بھی، تو آپ نے ہاتھ تو دھو لیے. آپ کلی کریں، اچھی طرح آپ نے کلی کی، اب ناک میں پانی ڈالیں جیسے آپ وضو کرتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اوپر تک پانی لے کر جائیں اور ناک کو بلو کریں جیسے آپ کرتے ہیں. اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کافی اوپر تک پانی چڑھا وہ سوری روزہ نہیں ہے تو کافی اوپر تک پانی چڑھا سکتے ہیں. پھر آپ چہرہ دھوئیں گے، پھر آپ کوہنیاں تک ہاتھ دھوئیں گے، پورے بازو. پھر اس کے بعد اب آپ وضو میں کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پورے کے پورے شاور کے نیچے جا سکتے ہیں یا سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پہلے سر پہ پانی ڈال لیں، پھر اس کے بعد سارے جسم کے اوپر پانی بہا لیں، اور اینڈ میں پاؤں ہم دھوتے ہیں وضو میں تو پاؤں دھو لیے. تو یہ میں نے آپ کو آسان کر کے بتایا. دیکھیے، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے ہاتھ دھوئے نا، کیونکہ آپ نے اس سے صفائی کرنی ہے اپنی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھویا، کیونکہ آپ پاک ہونے کے لیے آئی ہیں نا. ٹھیک ہے، پرائیویٹ پارٹس دھوئے. اب آپ نے اس کے بعد پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہاتھ لگانے سے پھر وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے یہ صاف کر لیا، تو اس کے بعد پھر اب آپ نے ظاہر ہے جس ہاتھ سے گندگی ساری صاف کی ہے، اب آپ اس ہاتھ کو دھوئیں گی. اب آپ نے اس ہاتھ کو صابن سے دھویا اچھی طرح، پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، फिर आपने चेहरा धोया, कोहनियाँ धोई, ये सारा वो वजू का ही सारे स्टेप्स आ रहे हैं। और जब आप मसा के ऊपर पहुंचे तो आपने बजाय मसा करने की, क्योंकि अब हम तो गुसल ही करने वाले ना, तो पूरे के पूरे सर को पानी के नीचे कर दिया, या फिर 3 बार आप सर पे पानी डालते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार सर पे पानी डालते थे, फिर तमाम बदन पे पानी डाल लिया करते थे। तो उसके बाद आप सर पे पहले करके फिर उसके बाद सारे जिस्म के ऊपर पानी डाल सकती हैं, ठीक है। और सर पे पानी किस तरह डालते थे कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाए, इस तरह से डालते थे। मैंने स्किन को गीला होना जरूरी है, ठीक है। फिर जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते गुसल करते थे उस जगह से हट के फिर पांव धोते थे। अच्छा, किसी भी हदीस में गुस्ले जनाबत का जो वजू है उसको करते वक्त सर के मसे का जिक्र नहीं है, ठीक है। सर आपने धो लिया ना, तो अब मसा करने की जरूरत नहीं है, तो मसा को आपने स्किप कर दिया, उसकी जगह सर धो लिया और पूरे बॉडी धो ली। तो कितना आसान है ना, इसके स्टेप्स को याद रखना मुश्किल है, भला बताएं। हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ले जनाबत में वज़ू का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि आपने सर का मसा नहीं किया बल्कि इस पर पानी डाला, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई बंदा इस तरह से वजू किए बगैर गुसल कर लेता है, पूरा नीचे चले गए शावर के नीचे और जाके उसने मतलब पूरे जिस्म पे पानी भर लिया, सर भी अच्छी तरह शैम्पू कर लिया और बड़ी खुशबूएं लगा के आ गया, आप क्या समझती हैं कि उसका गुसले जनाबत हो गया? नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उसने वजू नहीं किया ना उसमें, उसने उसके अंदर ना तो कुल्ली की है ना नाक में पानी चढ़ा है। बाकी ठीक है, बेशक सारा आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं, तब भी हो तो जाएगा आपका वजू, गुसल भी हो, मतलब गुसल हो जाएगा आपका सारा। पाँव अगर आपने पहले धो लिए, सर बाद में धो लिया, आपका गुसल हो गया। लेकिन अगर आपने कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना ये नहीं किया, आपका गुसल नहीं हुआ, चाहे आप समुंदर के बराबर पानी से नहा लें। समझ आ गई बात? अच्छा, तो सर के मसे की मेरा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। हज़रत आयशा ने कहा कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से नहाते और दोनों इससे चुल्लू भर भर के लेते थे, यानी मग्स वगैरह तो होते नहीं थे उस वक़्त और शावर भी नहीं होते थे, तो चुल्लू भर भर के ऊपर डाल लेते थे। और गुसल पर्दे में करना चाहिए, ये तो सबको ही उम्मीद है कि मालूम होगा। तो हमें इस हदीस से क्या पता चला कि गुसल के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे और उसी को फिर काफ़ी जानते थे। इसका मतलब क्या है? उसले जनाबत का वज़ू काफ़ी है आपके लिए, ये नहीं कि अब आप शावर से निकल के फिर उसके बाद फिर वज़ू करें। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसले जनाबत के बाद वज़ू नहीं करते थे, ठीक है। अब उसके बाद वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वज़ू हो चुका, अनलेस फिर कि आपने शर्मगाह को हाथ लगाया हो, फिर आपको दोबारा वजू करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का देखें यहाँ पर सवाल होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं नमाज की सारी ये सिलसिले, इसमें आपको गुसल का भी पता चल जाएगा, वजू का भी, तयमम का भी, तहारत का भी, नमाज के भी सारे अरकान। तो आया करें, इसको सुने प्लीज़, क्योंकि फिर उसके बाद सवाल करते हैं, अच्छा फिर दुपट्टा अगर सर से उतर जाए तो वजू टूट जाता है? नहीं, वजू नहीं टूटता, क्योंकि देखें आप यहाँ पे वजू हुआ है तो क्या सर पे दुपट्टा लेके आप शावर में गई नहीं थी? उस वक्त तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, तो फिर इसका मतलब वजू हो जाता है, इसका कोई सर पे दुपट्टा लेने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमने देखा, इंशाल्लाह ताला अगली दफा हम देखेंगे कि कब कब गुसल करना पसंदीदा है, मुस्तहब है या मसनून है, सुन्नत के मुताबिक है। ये वाला तो गुस्ले जनाबत तो आपको पता है ना फ़र्ज़ है, आपने जब भी नापाकी की हालत हो तो उसके बाद पाक होने का ये गुस्ल करना फ़र्ज़ है, आपको करना ही पड़ेगा। पर बाकी कई गुस्ल हैं जो कि अगर आप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, ठीक। इंशाल्लाह ताला फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि अभी हैं थोड़ा सा टाइम, तो फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहला क्या है? जुमे के दिन का गुसल। जुमे के दिन गुसल करना जो है वो पसंदीदा भी है, सुन्नत भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो उसे गुसल करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर हक है कि हफ्ते में एक दिन गुसल करे, इसमें अपना सर धोए और अपना बदन धोए। एक दिन ज़रूर गुसल करना चाहिए, और वो दिन पसंदीदा कौन सा है कि जुमे का दिन आप रख लें। अगर आपने वंस अ वीक गुसल करना है, अगर आप ज़्यादातर लोग तो ज़्यादा ज़ाहिर दफ़ा आप तो पानी के इस तरह के मसले मसाइल नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, लाना नहीं पड़ता कहीं से, कोई मसला नहीं है आपको पानी का, तो आप ज़्यादा दफ़ा भी नहा सकते हैं, और जैसे गर्मियाँ होती तो और भी नहा सकते हैं। तो अगर आप मसलन एक दिन पहले नहाना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जुमेरात को ही नहाना चाह रहे हैं, तो डिले कर सकते हैं आप कि जुमे के दिन अगर मैं गुसल करूंगी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये, तो चलो मैं एक दिन का डिले कर लेती हूँ। जुमे की सुबह को भी आप नहा सकते हैं, ज़रूरी है आप नमाज पर जाने से पहले ही नहाएं, सुबह सुबह ही आप नमाज फजर से पहले ही इससे फारिग हो सकते हैं। तो जुमा तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन हर बालिग मुसलमान पर नहाना वाजिब है। ये वाजिब यहाँ पे इस हदीस में कहा गया जो बुखारी की है, यानी ज़रूरी है। अगर नहीं करेगा तो गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन अगर कर लेगा तो उसको एक्स्ट्रा अजर मिलेगा। तो देखिए, आपने शावर तो करना ही होता है ना, तो अगर आप जुमे के दिन एहतमाम से ज़रा कर लें कि भाई मेक श्योर कर लें जुमे के दिन मैं शावर कर लूँ, तो इस नीयत के साथ कि इसका मुझे, क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत है तो इसका मुझे अजर मिलेगा, तो इंशाल्लाह देखें आप अजर भी पाएंगे। सिंपल शावर करने से ही आपकी नेकी लिखी जाएगी, सिंपल शावर। देखिए हमारा दीन तो इतना खूबसूरत है कि आपका, देखिए उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने इवन शावर तक करने पे आप नेकियां कमा सकते हैं, शावर तक करने पे। हालांकि वो आपका कितना पर्सनल काम है और आपकी अपनी हाइजीन के लिए ज़रूरी है, आपकी अपनी क्लीनलीनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने इस पे भी आपको अजर देने का एक यानी सिलसिला चला दिया कि जो जो बंदा जुमे के दिन गुसल किया करेगा तो उसको इसका सवाब मिलेगा, सुन्नत समझ के जो करेगा। तो वाजिब का मतलब क्या होता है, यानी इसकी बड़ी ज़्यादा ताकीद की गई है। फ़र्ज़ तो नहीं है, फ़र्ज़ तो वो है जिसको अगर नहीं करेंगे तो गुनाह है ना, वाजिब वो है कि बहुत ज़्यादा उसकी ताकीद है, लेकिन अगर ना किया तो गुनाह तो कोई नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पसंदीदा था जिसकी, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो उन्होंने वो बार बार जिन्हों जो बात की उन्होंने ताकीद की, पसंद फरमाया, उसको बार बार करने को कहा, तो फिर क्या हम उसको छोड़ेंगे? ठीक है, चलें जी, यहाँ तक इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ तक इख्तिताम करते हैं इसका, और फिर इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा देख लेंगे और कौन कौन से मौके पर गुसल करना मसनून है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।